Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Acharya Swami Sri Bhagavatanandaji Saraswati Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Param Premaspad Paramatma Swarup. पहले आपने सुना कि आत्मा सत स्वरूप है तो गुण नहीं है, स्वरूप ही उसका है। गुण अगर कह देंगे तो क्या हानि है? तो ये हानि है कि अनात्मा का दोष आ जाएगा उसमें, आत्मा अनात्मा हो जाएगी, क्योंकि और भी चीजें सत स्वरूप हैं। तो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है। मुझ चिदाकाश में गंधर्व नगर की तरह ये देश दिखाई दे रहा है, सारा विश्व। मुझ चिद स्वरूप में ये सारा विश्व दिखाई दे रहा है। और आत्मा आनंद रूप भी है, आनंद स्वरूप है, गुण नहीं है आनंद का। ये बात जानने चाहिए। माने गुण कहने से याज्ञवल्क्य जी ने भी इसको स्वरूप ही माना है। ज्ञान गुण है, जैसे नैयायिक लोग कहते हैं कि ज्ञान अनेक होता है, ऐसे अनेक नहीं होता है, ज्ञान एक ही है। वही ज्ञान, एक ज्ञान पुस्तक में और शीशा में और दर्पण में, पशु पक्षी में, एक ज्ञान तो एक है। ज्ञान दो थोड़ी होते हैं। स्वरूप में वो मे ज्ञानम न गुणा न गुणो सा गुणो, यदि वो गुण होगा तो फिर कैसे बनेगा? अनात्मा का दोष लग जाएगा, अनात्मा हो जाएगा वो। इसलिए चिद्रूप ज्ञान भी आत्मा का गुण है, आत्मा स्वरूप है और आनंद भी स्वरूप है। अब सुख चार तरह के होते हैं, आत्मा और प्रिय, अप्रिय और उत्पेक्ष, उपेक्षा जिसकी की जाए, ऐसे चार प्रकार के सुख माने गए। तो आत्मा का सुख आमेव सुखम नान्यत कहते हैं, मैं ही सुख स्वरूप हूं, अन्यत माने अन्यत माने गुण नहीं है, अन्यत चे नहीं सुखम, और दूसरा कोई सुख नहीं है, गुण नहीं है। मने अमदर्थम न ही प्रियो, मदर्थम न सुता प्रियम, अपने लिए जैसे स्वर्गाय जीत कहा, स्वर्ग के लिए यज्ञ करो, तो स्वर्ग के लिए यज्ञ करने का ये मतलब नहीं है कि वो सुखी हो जाए। वो सुखी तो अपने आत्मन सुखामाय सर्वम प्रियम होती, अपने लिए प्रिय होता है, ये बात समझना चाहिए, अपने लिए प्रिय होता है। और यदि आत्मा आत्मा शेष और उपेक्ष, शेष माने प्रिय होना अप्रिय होना, अपने लिए प्यारा होता है हर एक, जैसे आप पुत्र को प्यार करते हो। पुत्र को क्यों प्यार करते हो? कि बड़ा होगा फिर हमको सुखी करेगा, तो अपने सुख होते हैं अपने को। बाबा बूढ़े हैं, दाढ़ी गड़ाए चले जा रहे हैं पेट में, और बच्चा रो रहा है तो उनको सुख मिलता है, दाढ़ी गड़ाने में उन्हें सुख मिलता है। अपने सुख के लिए व्यक्ति काम करता है, और वो सुख आत्मा का प्रेमास्पद रूप है, प्रिय है, अपना आपा ही प्रिय है। जैसे देह प्रिय नहीं है, देह का हाथ कटा देते हैं, पांव कटा देते हैं, आंख निकलवा लेते हैं, कान निकलवा लेते हैं। यदि सुख स्वरूप होता तो हाथ क्यों कटाते? अच्छा, इंद्रियों की ये दशा है, मन मन हमारा नहीं लग रहा है, मन को भी देखते हैं, बुद्धि समय नहीं ठीक है, बुद्धि योग दीजिए प्रभु, जिससे सद्बुद्धि रहे। सद्बुद्धि मिलेगी तो देह से भिन्न बुद्धि हो गई और हमसे भिन्न बुद्धि हो गई। अच्छा, अब प्राण, प्राण भी कभी कभी बहुत तेज दुख की भ्रांति होती है तब आत्महत्या लोग कर लेते हैं। आत्महत्या करने से क्या मिलता है, कहते प्राण चले जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे, तो सुख कोई दूसरी चीज है। सुख अन्न पान से जो मिलता है वो तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। नहीं कहते सुख बड़ा आनंद आया। बड़ा आनंद कहाँ से आया? बाहर से कहीं से आनंद आया होता तो आनंद आता, ये तो आया नहीं है आनंद। तब तो फिर क्यों बोला जाता है सुख नष्ट हुआ, सुख आया उत्पन्न हुआ? बोले वो ये भाषा है, एक तरह की उपाधियां उत्पन्न होती हैं, उपाधियां नष्ट होती हैं, सुख नष्ट नहीं होता है। सुख तो सदा सदा रहता है, सुख में चाहते हैं, इसीलिए प्रयास है। आत्मा यदि सुख का साधन मान लो, आत्मा सुख का साधन है, तो साधन में उपकारी किसका होगा? साधन तो किसी का उपकार करता है, तो आत्मा एक ही है, तो उपकार किसका करेगा? ऐसे समझ लेना चाहिए। उपकार, और यदि आत्मा ही आत्मा का उपकार करती है तो कर्म करती दोष हो जाएगा, कर्म जो है वही कर्ता बन जाएगा, कर्ता कर्म बन जाएगा, दोनों तरफ से आपत्ति है। यदि आत्मा अपने को जानता है कि नहीं जानता, यदि जानता है मानोगे तो आत्मा आत्मा को जानता है, कर्म करती विरोध। और आत्मा कोई दूसरी वस्तु है उसको जानता है, और नहीं जानता है तो दोष है, और जानता है तो दोष है। तो आत्मा अपने को जानता है तो दोष है, माने कर्म कर्त विरोध है सीधा सीधा। कर्म करता आत्मा किसको जानता है? आत्मा भाई आत्मा को जानता है। तो आत्मा को माने को कर्म होता है, कर्म और कर्ता का विरोध हो जाएगा। तब कहा कि आनंद को सच्चिदानंद आनंद मान लो। तब ये कहा कि सच्चिदानंद या सत्यम ज्ञान मनंत ब्रह्म, ये तीनों एक हैं कि अलग अलग हैं? तो कहा एक हैं तो पर्यायवाची शब्द हुए, तो अलग देने की जरूरत नहीं। सत्य ज्ञान जो सत्य है वही ज्ञान है, अनंत है वही है, तो तीनों शब्द एक है। सच्चिद आनंद अगर एक है तो फिर पर्यायवाची शब्द होने की वजह से इनको अलग अलग नहीं देना चाहिए था, एक है दे देते। तो बोले एक दे देने से हानि है कि सद चिद के बिना नहीं रह सकता। सद तो जड़ है, तो चिद जब अजड़ में सत्ता कैसे होगी? सत्ता तो जड़ में चेतन में होती है, तो चिद के बगैर सत नहीं रह सकता, और सत के बगैर आनंद नहीं रह सकता। आनंद में सत चिद अगर न जुड़ेगा तो कैसे? सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म है, सत्य ज्ञान के साथ है, नहीं तो सत्यता ज्ञान की। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, सत्यता ज्ञातता आनंदता ये खत्म हो जाएगी, रहेगी नहीं, अनाथ पदार्थ हो जाएगा। सब प्रकार सत्य ज्ञान मनंत एक ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप मान लिया गया, के गुण नहीं माना गया। अगर एक मान लेंगे तो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो पर्यायवाची शब्द देने की दोनों की क्या जरूरत, एक ऐसे काम चल जाए। तो ये इसमें बताया गया है, ये आपको संक्षेप में बताया। आनंद तक हो गया था कल। अच्छा, नहीं नाना रूपम स्यात, नहीं नाना रूपम स्यात, बोलो
नहीं नाना स्वरूपम स्यात,
एकम वस्तु कदाचना,
एकम वस्तु कदाचना,
तस्माद् अखंड एवास्मि,
तस्माद् अखंड एवास्मि,
विजहत् जागतिम भिदाम,
विजहत् जागतिम भिदाम।
हाँ, कहते हैं नाना स्वरूप नहीं है, एक वस्तु है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म अलग अलग नहीं है, सत्य अलग हो ज्ञान अलग हो अनंत अलग हो ऐसी बात नहीं है, एक ही है वस्तु। तस्माद अखंड वास्मी, इसे अखंड है विजहत विजहत जागतिम विधाम। जागृत अवस्था में भेद मालूम पड़ता है तो विजहत माने उसको छोड़ करके, भेद को छोड़ करके जगत रूप उपाधि के किए हुए भेद को त्याग दो और त्याग के अखंड एक रस हो जाओ। एकम अद्वितीयम अस्ति। अद्वितीय इसलिए कहा कि द्वितीय कहेंगे, एक कहेंगे तो एक एक ग्यारह हो जाता है, एक एक दो हो जाता है, और अद्वितीय अद्वितीय चाहे जितने बार कहो अद्वितीय रहेगा, अद्वितीय रहेगा। इसलिए अलग अलग नहीं है, एक ही है। नहीं नाना स्वरूपम स्यात् एकम वस्तु कदाचना, एक ही वस्तु है और वो ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। बताया था सुख स्वरूप आत्मा अगर है तो आत्मा आत्मा और शेष शेषी धर्मी धर्म और ये गुण गुण नहीं है, आत्मा का गुण नहीं है बल्कि स्वरूप है। गुण में ज्ञान में सद चिद आनंद में गुण कहने से क्या भेद हो जाएगा, कहले अनात्मा हो जाएगा, ज्ञान ज्ञात और ज्ञातृभाव जग जाएगा। ज्ञान ज्ञान और ज्ञे ज्ञान ज्ञे अलग अलग है, ज्ञान ज्ञे दृश्य रूप है, दृश्य रूप है तो वो भी दृश्य हो जाएगा, उसका दृश्य हो जाएगा, उसका दृश्य हो जाएगा, अगर अलग अलग मानोगे तो। एक मानना चाहिए, यही कह रहे हैं एकम वस्तु कदाचन, एक ही वस्तु है। तस्माद अखंड वास्मी, ये जगत को क्यों मिला है, जगती माने जगत जगत संसार को पाकर के भिदाम भिदाम विजात विजात माने त्यागना, त्याग कर भेद को त्याग करके अखंड एक 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 रस रहना चाहिए। तो बात समझ आ गई, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान अनंत ये एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। और सत्यम ज्ञान सच्चिद आनंद, ऐसे सद चिद आनंद तो सत्यता और ज्ञातता आनंदता ये नष्ट हो जाएगी। अब महावाक का विवेचन आया, परोक्ष परोक्षता परिच्छेदता परिच्छेद सावल्य, परोक्षता परिच्छेद सावल्य अपोह निर्मलम,
अपोह निर्मलम
तदसीत गिरा लक्ष्यम, अहमेक रसम महा,
अहमेक रसम महा।
देखो तत् तुम है, तत् तुम तो तत् में तत् ईश्वर के लिए आया, तुम जीव के लिए आया, तो तुम जीव में क्या है, जीव सामने है, परोक्ष है अपरोक्ष है, और वो परोक्ष है ब्रह्म ईश्वर, देखा नहीं है ना, अक्षा परम इति परोक्षा, इंद्रियों से परे परोक्ष कहलाता है। अक्षा अक्ष माने इंद्रियां होती हैं, अक्षा परम इति परोक्षा। जैसे रामो राजा बभूव, राम राजा हुए थे, अब राम को किसी ने देखा तो है नहीं, अंदाज शास्त्र से कहते हैं, शास्त्र में जो लिखा है वही कहते हैं। तो परोक्ष है, ऐसे ईश्वर है को शास्त्र में बताया, ईश्वर को देखा तो किसी ने है नहीं, तो परोक्ष हो गया। और अपरोक्ष है, अपना आत्मा है, इसका अनुभव होता है रोज, तो साक्षात अपरोक्ष अपना आत्मा है और परोक्ष ब्रह्म है। तो दोनों की एकता इसलिए जरूरी है कि अगर दोनों की एकता नहीं करेंगे आत्मा की ब्रह्म की, तो आत्मा अलग पड़ा रहेगा, तड़फड़ाता रहेगा, कटा छटा पिटा रहेगा, और ब्रह्म अपरिछिन्न है, वो असीमित है, अनंत है। तो अनंत और असीमित होने के कारण दोनों को मिलाए देने चाहिए। तो परोक्षता इसकी हटा लो, उसकी अपरोक्षता हटा लो, और परिच्छेद माने सीमितपना, सीमितपना इसका भी हटा लो उसका भी हटा लो, और सावल्य कहलाती माया, मायोपाधिक और अविद्योपाधिक। माया मायोपाधिक होगा स्वप्न जागृत सुषुप्ति ये समष्टि, और अविद्या आस जीव है, तो इसका भी अविद्या हटा लो उसकी भी विद्या हटा लो, तो हटाने पर निर्मल ज्योति रूप है, अखंड एक रस बन जाएगा। तत् तुम एक है, तत् तुमसी कैसे बनाओगे, परोक्षता इसकी हटा दो और भाग त्याग लक्षणा के द्वारा, और उसकी भी अपरोक्षता हटा दो, और इसकी परिच्छेद पर सीमा, सीमा बांधे नहीं, सीमा सीमित करने ना कहलाता है, सीमित ये भी नहीं है वो भी नहीं है, असीम वो भी कर दो वो भी कर दो, तीनों चीजें तीनों में हटाओ, और तीनों चीजें भाग त्याग लक्षणा से दोनों के एक कर दो, ये तत्त्वम बताया। तत्त्वम असी, तत्त्वम असी बहुत प्रसिद्ध है, तुम जीव को कहते हैं, तत् ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर परोक्ष है, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, और मैं को अपने को देखा है, तो कूटस्थ और ब्रह्म की एकता हो जाएगी, जीव ईश्वर की एकता होने के लिए परोक्षता परिच्छेदता सावल्य और अपो, अपो मैं दूर करो, निर्मल बुद्धि हो जाए जब, तब तद असी वो मैं हूं, ये भाग त्याग रक्षा लक्ष्यम एक रसम हो महा, माने वो तेज हूं जो दोनों की एकता करके बनता है, वो एक तेज मैं हूं, परोक्षता परिच्छेदता सावल अपो निर्मल होने पर तद सीत गिरा वो असी मैं हूं, ये महावाक्यार्थ विवेचन हुआ। महावाक्यार्थ विवेचन तो आप लोग जानते हैं, वाचार्थ में किसी का लक्ष्य नहीं होता है, लक्षार्थ में लक्ष्य होता है, भाग त्याग लक्षणा के द्वारा जो चीज दोनों में मिलती है उसको अलग कर दिया और मिला दिया दोनों को, जैसे बताया तत्त्वम तुम जीव है, जीव का क्या है उपाधि, देह उपाधि है, देह उपाधि है, इंद्रियां उपाधि है, मन उपाधि है, बुद्धि उपाधि है, उपाधि को हटा दिया और परोक्ष है अपना है, इसलिए सीमित हो गया, ये जीव कहलाने लगा। वास्तव में जीव और बीज एक ही चीज है, बीज में क्या होता है, जैसे आप लाए बहुत बहुत प्यार से और बहुत ब्राक प्रमुख से लाए और बड़ा कीमती आया जीव बीज, अब बीज तब बीज है जबकि वो जमीन अच्छी मिले, जमीन अच्छी न मिली उसको लिए गाड़ने के लिए तो वो बीज बेकार धरा रहेगा, तो जमीन अच्छी होनी चाहिए, जमीन के बाद फिर सिंचाई और उसकी होनी चाहिए तब बीज जमेगा, सिंचाई खाद पड़े सिंचाई हो तो खाद पड़ गई सिंचाई भी हो गई। अच्छा अब क्या होना चाहिए, अब फसल पके फूल निकले फल निकले और फिर पक जाए तब उसको काट लिया जाए तब खरियान में रखा जाए या ऐसे निकाल लिया जाए जैसे आजकल निकाल लिया जाए खेत में ही, अब खरियान की जरूरत नहीं रही, पहले पुराने जमाने में मशीनें नहीं थी तो इसलिए होता था, अब मशीनें आ गई तो इसको यू समझना चाहिए कि बीज को पहले बीज मिला ब्लॉक प्रूफ बहुत बढ़िया बीज है, अब फिर उसको जमीन चाहिए अच्छी सी जमीन, जैसा बीज होगा वैसी जमीन चाहिए, डिला में और घास में फेंक गया तो थोड़ी बीज जम जाएगा, बढ़िया नहीं जमेगा, तो बीज चाहिए, बीज को चाहिए सात बातें, पहले बीज को जमीन चाहिए, बीज को फिर निराई हो चाहिए, सिंचाई हो, खाद पड़े, फिर निराई हो। कई बार निराई होती है, कई बार होता है, यही सत्संग है। बार बार बुद्धि को बार बार प्रेरित करना, वैराग्य की ओर ले जाना, ये क्या है? सिंचाई है और खाद डालना है। खाद डाली, सिंचाई हुई, उसी तरह से सत्संग किया, साधु संग किया, और साधु संग से ये ज्ञान हुआ कि हम इस तरह से करें तो अच्छी फसल होगी। तो फिर फसल हुई, फिर उसको देखा, हाँ ये तो वास्तव में वजन भी ज्यादा हुआ। एक एकड़ में जैसे कई कुंतल होता है, तो अब की बार ज्यादा हुआ, तो तब बीज की परख हुई। बीज अच्छा है ये तब जाना जब अंत में आया घर पे, सातवें पॉइंट पे। घर पे जब आ गया और तौल लिया, बोले हाँ ज्यादा भी हुआ और अच्छा भी है, ये बहुत अच्छा खाने को, ये बढ़िया है, तब बीज। इसी तरह से मनुष्य का जीवन है, बड़े भाग मानुष चंद पावा, थोड़ी मनुष्य का जीवन। सात बातें होना चाहिए। पहली चीज है ब्राह्म प्रयोग से आया, ये ईश्वर ने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया, किसी ने बनाया, सही मनु महाराज शत्रुपान बनाया, मनुष्य बना। मनुष्य के बाद फिर खाद सिंचाई हुई, सत्संग, संत का संग मिल जाए, ये सबसे बड़ा दुर्लभ है। फिर सत्संग के बाद फूल, फूल है, फूल संयम नियम, फूल फल ज्ञाना, संयम नियम से चले, संयम नियम फूल फल ज्ञाना, फल ज्ञान है, आत्मज्ञान होना चाहिए। कहा गया मिथ्या ज्ञान आत्मज्ञान विजंबित जगत है, बड़ा लंबा सपना है, इसमें बताया आपने पढ़ा, आत्मज्ञान विजंबित जगत अस्मिन जगत, ये जगत क्या है, एक तरह का लंबा सा सपना है। तो इस तरह से बीज और जीव, बीज का उल्टा दे दो, बाई जा और जाओ ही बा जीव, उसी तरह से ये में भी जरूरत है। इसमें सत्संग की बड़ी जरूरत है, सत्संग चाहिए, फिर सत्संग के बाद फिर फूल चाहिए, संयम नियम हुए, फिर ज्ञान हुए, फल ज्ञान होता है, और फिर ज्ञान के बाद परपक्व रस हुए, दोनों की एकता हुए, जीव और ब्रह्म की, कूटस और ब्रह्म की, जीव और ईश्वर की एकता होनी चाहिए। एकता अगर नहीं होती है तो नहीं बनेगा काम, क्योंकि वो परोक्ष रहेगा और ईश्वर को किसने देखा है, परोक्ष ही बना रहेगा।